भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र परमात्मा को प्रणाम। परम भागवदीय पुण्य श्लोक परमात्मने श्री 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 प्रेमपुरी जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज और आप सभी के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। दो श्लोक पढ़ेंगे, 21 और 22।
तीतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्, तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना, एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना, गतागतं काम कामा लभन्ते, गतागतं काम कामा, गतागतं काम कामा लभन्ते, अनन्यश्चिन्तयन्तः माम्, ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां, योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। तीतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति, एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्नाः गतागतम् काम कामाः लभन्ते। ते कहते हैं उन्हें, वे तम उस विशालम विशाल स्वर्गलोकम, स्वर्गलोक को भुक्त्वा भोग करके, पुण्य क्षीणे पुण्य क्षीण होने पर, मर्त्यलोकम पुनः मृत्युलोक को विशन्ति प्राप्त होते हैं, एवं इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप त्रयी धर्मम, तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के अनुप्रपन्नाः शरण हुए, काम कामाः भोगों की कामना वाले पुरुष, गतागतम बारंबार आने जाने को लभन्ते प्राप्त होते हैं। वो तो 15वां अध्याय में जिसे कहा यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, एक बार जाने के बाद में आते नहीं, ऐसा नहीं है, वो गया तो वापस भी आ सकता है। अर्थात पुण्य के प्रभाव से तो स्वर्ग में जाते हैं, किंतु जब पुण्य पूरे हो गए तो मृत्युलोक में वापस आ जाते हैं। अब कहते हैं कि अनन्याः चिन्तयन्तः माम, ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। ये अर्थात जो अनन्याः अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए और किसके भी नहीं, केवल मुझको ही देखे, जनाः भक्तजन माम मुझ ईश्वर को, चिन्तयन्तः निरंतर चिंतन करते हुए, पर्युपासते निष्काम भाव से भजते हैं, तेषाम उन नित्याभियुक्तानाम नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का, योगक्षेमम। ध्यान दें, भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम योग है। क्योंकि साधारण रूप से योगक्षेम का अर्थ लोग ऐसे सभी समझते हैं कि हमारे घर में आटा दाल चावल है वो भगवान दे सकता, किराने वाला नहीं है। योगक्षेमम अहम, मैं वहां ही प्राप्त करता हूं। अर्थात हम लोग जो भगवान का ध्यान करें, पाठ करें, पूजन करें, तो इनमें वो रक्षा करता है, वो करने के लिए सहायता प्रदान करता है। कल जहां पर हमने बात को, विचार को विराम दिया था, थोड़ा उसको थोड़ा देखना चाहिए कि हम जो रोज कर रहे हैं, इसका मतलब हम रोज क्या करते हैं भाई। एक बार हम मकान बना लेते हैं, कल क्या कहा कि सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय हुआ तो उसके साथ सूर्य अस्त भी जुड़ा हुआ है। उदय हुआ तो क्या हुआ, वो प्रतिक्षण अस्त की ओर ही जा रहा है। जन्म हुआ तो प्रतिक्षण मृत्यु की ओर जा रहा है। आरोहण हुआ, वो कितने जोर से वो हवाई जहाज ऊपर गया, रॉकेट ऊपर गया, रहता नहीं है, कभी तो नीचे आ जाएगा। हाँ, नीचे आ रहा है, तो जन्म है तो मृत्यु है, आरोह है तो अवरोह भी है, सूर्य उदय भी है तो सूर्य अस्त भी है, तो सुख भी है तो दुख भी है। मकान बना लिया, मकान में गृह प्रवेश कर रहे हैं। ये गृह प्रवेश करना क्या होता है, वो गृह प्रवेश है, इसका मतलब है कि अब धीरे धीरे इस क्षीण होने के लिए ऐसा कोई सोचते नहीं है, मगर ऐसा होता है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, मैं तो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूछकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं। ध्यान दे, हमारी पूरी सृष्टि ऐसी है। वो पुराने समय में, आजकल तो ईमेल हो गया, आजकल तो फैक्स भी हो गया है, जो फोन करते थे बच्चे स्कूल में, हॉस्टल में रह करके पढ़ने वाले, पिताजी को पत्र लिखो, ऐसा स्कूल में पढ़ाया जाता था। क्या है पत्र में, ओ टर्म फी भरने का है, फलां तारीख के पहले पैसा भेज देना, रिमाइंडर देना है, तो ऐसे लिख दिए। तो टीचर बोलते थे, ओ जी ऐसा नहीं लिखते, क्या लिखना चाहिए, अब गर्मी छट गई है, मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, पिछले तीन दिन से जम करके वर्षा हो रही है, चारों ओर वातावरण बड़ा सुंदर हो गया है, और वर्षा आने से पृथ्वी से सुंदर सुगंध आ रही है, और पेड़ के पत्ते ऋतुस्नाता सुंदरी के समान सुंदर दिख रहे हैं, और फूल खिल गए हैं, और बादल जमीन तक नीचे तक आ जाते हैं, घाटियों में जब कभी हम गए तो हम ऊपर बादल नीचे रह जाते हैं, वातावरण आह्लादक मुखरित हो रहा है। मुझे लगता है कभी सैटरडे संडे की छुट्टी में मम्मी को लेकर के पापा आप भी यहां आए, तीन दिन रहें, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और बाय द वे, ये अगला सोमवार को हमको टर्म फी देने का है, तो आप आए तो साथ में लेते ही आएंगे, तो मनी ऑर्डर का खर्चा नहीं लगेगा, ड्राफ्ट नहीं भेजना पड़ेगा, और टर्म फी तो इतनी है, और उसके साथ में थोड़ा पॉकेट एक्सपेंस, क्योंकि आजकल पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, तो थोड़ा और भी पेट्रोल का पैसा भी जरूर भेजिएगा। और मम्मी को खास कहिएगा, मेरा नाश्ता सब डब्बा खाली हो गए हैं, तो ये भी लेकर के आए। बाकी तो सब बहुत बढ़िया है। मेरी टीचर मेरे को कह रही थी कि आपके मम्मी पापा को मेरी भी याद दिलाना, क्योंकि वो कह रही थी कि पापा जी, वो आपके मौसी की बुआ के बेटे की वो साली लगती है, तो आप उसको ठीक जानते हैं, तो सबको याद, सबको पाए लागो, बड़े बाबूजी को भी प्रणाम बोलना, और पड़ोस के गुड्डू को भी, गुड्डी को भी याद देना। ये पूरी चिट्ठी में मध्य स्वर क्या है, पैसा है, मगर आगे पीछे बहुत कुछ बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ऐसे टीचर सिखाते थे, ऐसे लिखो। हम कोई भी बात परमात्मा से करते हैं, तो कल रात देर गई, बहुत लंबी लंबी फोन आई है दिल्ली से, बहुत दिन हो गए आपकी आवाज सुनी नहीं, कितने दिन हो गए सुना, आजकल आप बंबई में हैं, बंबई में क्या हो रहा है, बंबई में क्या चलता है, प्रेमपुरी आश्रम कहाँ है, कभी हम आ गए तो ब्राम 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 ब्राम। वो एफिल टावर से चल करके न्यूयॉर्क गया, न्यूयॉर्क से आकर के ऑस्ट्रेलिया गया, लंदन में चक्कर जगा करके जर्मनी फ्रैंकफर्ट में घूम करके कलकत्ता दिल्ली होकर के बंबई प्रेमपुरी में फोन में आ गया। वो इतना लंबा बात करने के बाद में हमारे समाचार आश्रम के समाचार पूछने के बाद में धीरे से बोल रहा है, समझिए कल मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन है। हमने कहा एग्जामिनेशन बोलने से क्या होता है, तुम्हारा मेडिकल इन्वेस्टिगेशन से। हाँ हाँ हाँ, आपने ठीक समझा, समझिए आशीर्वाद करना सब ठीक हो जाए। तो इसके लिए तो का 40 मिनट तक सब गाना गा रहा है। ये हमारी प्रकृति है। प्रकृति क्या है कि मन जो है वो हमेशा सुख को ही आकांक्षा करता है, किंतु सुख की आकांक्षा के पीछे जो आलापतान करता है वो दूसरे को कितना सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है उसके लिए हम सोचते नहीं है। एक दादी ने आकर कहा, महाराज जी हमको आशीष करना, सत्संग सुनते सुनते चले जाए, ध्यान देना। हमने कहा इसी भाव में रहना। एक दादी ऐसे ही कथा में आती थी, दिवाली के दिन सत्संग में भी आई थी, रात अन्नकूट में दर्शन किया, बाद में आदत के मुताबिक अपने बिस्तर में बैठ के जप कर रही थी, जप करते करते चली गई। तो ये मन जो है वो हमेशा अनुग्रह भी करता है विग्रह भी करता है। मन को किस दिशा में लगाओ, मन के पीछे आप सोच लो कि सवेरे 3:30 बजे उठना है, वो 3:20 बजे ही अंदर से चलना चालू हो जाएगा। क्या क्या विचार, आंख खोल के टोर्च लगा के देखो तो अभी 22 हुआ है, उठो चलो। ये मन है उसको क्या कहो वो करता है, किंतु नहीं कहने पर कुछ और भी करता है। ये मन जो है वो विभाजित करने का स्वरूप में हो, वो स्वर्ग भी दिला सकता है, वो नरक भी दिला सकता है, द्वंद भी कर सकता है, द्वंद उसका स्वभाव है। मन को कहा जाए कि आज ये नहीं करना है तो वही करने में वो ज्यादा ललचाता है। मैं बहुत बड़ी सीधी बात कहेंगे, मुझे पता नहीं आप लोगों को सब याद है कि नहीं है, मैं कभी नहीं भूल सकते जब मन की बात आए तो। जब पहले सिनेमा घरों में जाते थे सिनेमा देखने में, तो सिनेमा घर में आ गया है, सिनेमा घरों में जाते थे तो सिनेमा चालू होने के पहले वो ऐसे ऐसे एक स्लाइड आती थी, स्लाइड वो पुराने बिना गा गीत माला के गानों की ट्यून के माफिक म्यूजिक बजेगा, इधर से आएगा ये जूता खरीद करो, ये आएगा वहां से रुमाल खरीद करो, फिर सिगरेट के ऊपर में एक चुकड़ी आ जाएगी कि सिगरेट धूम्रपान मत करो, फिर यहां थिएटर में बैठ के पॉपकॉर्न मत खाओ, एक ऐसी बात दिखाते थे। वो एक ड्रॉइंग आता था, आप जहां बैठे हो वहां से लंबा पांव करके आगे वाली कुर्सी में अपना पांव मत रखो। जब तक ये स्लाइड नहीं आती थी तब तक तो पांव नीचे रहते थे, जिस समय स्लाइड आई तो देखते आगे कोई है क्या, नहीं है, उठा करके पांव वहां रख देते। ये होता है, मन को कहा ये मत करो तो ऐसे ही मन करने का आदि है। कृष्ण कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, आपको मन के प्रति जागरण तो करना ही पड़ेगा, नहीं किए तो फिर आनंद है सुख तो दुख दोनों पार में है। आनंद तो वह पाता है जिसके सुख और दुख दोनों को दोनों की दृष्टि हो जाती है, और आनंद तीसरी बात है, आनंद सुख नहीं है। जैसा कि आमतौर पर लोग समझते हैं कि आनंद से ही सुख का ही परम रूप है, बिल्कुल नहीं है। ये सीधी बात बताएं, एक तो हमें सुखदेव की कथा पता है कि सुखदेव जी को श्राप लगा, तक्षक आकर के आज से 7वें दिन तुम्हें काटेगा। क्या किया उसने, वो जाकर के गंगा किनारे पर बैठ करके अनशन करके बैठ गए, बस अब 7 दिन है भगवत ध्यान करेंगे। उसकी इतनी निष्ठा देकर के तमाम ऋषि मुनि लोग आए, सुखदेव जी महाराज का भी वहां पर आगमन हुआ, एक निष्ठा है। और दूसरा कोई है, उनको पता हुआ कि मुझे कैंसर हो गया है, बस फोन कर दिया, स्वामी जी मुझको कैंसर हो गया है, काइंडली कम, आकर के मुझे आशीष कीजिए, भरोसा नहीं है शाम को मैं रहूं कि ना रहूं, फोन रख देंगे। नजदीक में कोई रहते हैं तो जाओ तो पीला कपड़ा उठ करके, कमरा बंद करके, धूप लगा करके, उसके बाद में तो अभी तक भी जिंदा है, 12 साल हो गया। मगर वो मन में एक ऐसी स्थिति, एक मन है वो जानता है 7 दिन के बाद में मुझे जाना है, तो आनंद में रहता है, पुलकित में रहता है, कृष्ण में वो मन रहता है। दूसरा है मुझको कैंसर हो गया, कब मरेंगे, वो मरेंगे उसके पहले मर जाता है, वो मरने के पहले मर जाता है, वो जिंदा ही नहीं उस समय ही न्यूज सुन के मर जाता है। क्यों ऐसे होता है? ऐसे मत करो, स्वर्ग भी मिल जाए तो भी लौट के आना पड़ेगा। मृत्यु है हमारे जीवन का पूर्ण विराम नहीं है। काफी लोग तंग आकर के आत्महत्या कर लेते हैं, तो आत्महत्या करके आप और दुखी होंगे, क्योंकि जो वासना नहीं मिटी है, शरीर था तो अपने ढंग से सोचने के लिए बाधित है, अब शरीर चला गया, बिना शरीर के जो वासनाएं रहती है वो भूत प्रेत बनकर के घूमती रहती है और अधिक कष्ट होता है। इसलिए हमारे जीवन में सुख का एक आखिरी बिंदु हो जाएगा, किंतु उस बिंदु के पास से फिर दुख की रेखा चालू हो जाएगी। मुझे तो वो नहीं पा सकता है, भगवान का मुझे तो वो नहीं पा सकता है, किंतु सत में असत में, स्वर्ग में नरक में, पाप में पुण्य में, किसी में भी वो भेद नहीं देखेगा। इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस, ब्लिस ब्लिस एब्सोल्यूट, हर हाल में अलमस्त सच्चिदानंद हूं, इधर भी वाहवा है उधर भी वाहवा है। तो अगर ऐसी अवस्था रहे तो कहते हैं बस, फिर वो मुझको जरूर पाएगा, क्योंकि वो आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म की स्थिति में है। फिर वो कैसी भी अवस्था में हो वो मुझको प्राप्त ही होगा। इतने गत दिवस के बातों को थोड़ा टटोलते हुए कि भाई मन बाहर तो बांटता है, क्या कहा, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। क्या कहा कि मन तो बाहर तो बांटता है, भीतर भी बांटता है। मन से बाहर जो भी हम जानते हैं वह तो खंड खंड है ही, किंतु वो भीतर भी सब कुछ खंड खंड करता है। मन के इन पहलुओं को समझना थोड़ा बहुत जरूरी है। मन के साथ साथ कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं होता है। सवेरे सवेरे हमने आदरणीय श्री मधु बाबू जी से कहा, देखिए कि आप समझते हैं कि ये रानी सती जी झुंझुनू में ही है? बोले हाँ हाँ। मैंने बोला जरूरी नहीं है, रानी सती कभी भी आती है, सवेरे भी आती है, दोपहर को भी आती है, शाम को आती है, जहां रहो साथ में ही रहती है। हाँ, क्या हम समझते हैं कृष्ण छलिया है वो द्वारकाधीश में है क्या? नहीं नहीं, वो सभी समय रहता है साथ। इस डिपेंड्स कि आप किसके साथ में रहते हैं, रानी सती के साथ में रहते हैं कि आप कृष्ण के साथ में रहते हैं कि चौपाटी में भेल खाते हैं। किंतु जो मन है, मन वो कभी भी अकेला नहीं रहता है, वो हमेशा भीड़ में रहता है। किंतु कोशिश करो तो भीड़ में भी वो अकेला रह सकता है। इट्स ऑल अप टू यू, बॉल इज इन योर ओन कोर्ट, यू हैव टू डिसाइड। हमारी चेतना है उसको पूर्व में लेके जाना है कि पश्चिम में लेके, जैसा आप अभ्यास करें वैसा होगा। तो मन जो है वो भीतर भी मन एक नहीं है, अनेक है। सदा से इंसान ऐसा समझता आ रहा है कि मन एक है, किंतु हमारे भीतर भी अनेक मन है, बहुत सारे। मैन इज एन पॉलीसाइकिक, बहुत मन है भीतर, एक मन नहीं है। ये बहुत मन इसलिए है कि मन जहां भी चरण रखता है वहां खंड खंड हो जाता है, इस डिवाइडेड सेल्फ, कहां कहां रहता है एक साथ में, कोई भरोसा नहीं। तो ये भीतर के मन की खंड खंड स्थिति क्या है, थोड़ा उसको भी थोड़ा समझें कि आपने शायद कभी ऐसी कोई मन की स्थिति पाई हो जिसके विपरीत स्वर आपके भीतर मौजूद ना रहा हो। किसी को आपने कहा कि प्रेम करेंगे, ऐसा नहीं होता है, प्रेम के साथ में घृणा भी बनती है। आप समझते हैं कि मेरा इनके साथ में इतना प्रेम था, दिन रात हम लोग साथ उठते थे बैठते थे, एक दिन नहीं हो कि साथ में या तो हम उनके यहां खाना खा लेते, हमारे यहां खा ले, वो गले में हाथ लगा करके लंगोटिया जैसे ही थे, बस मान लो बस। अब क्या बताएं, देखने को दिल नहीं चाहता है उसको ना, चेहरा नहीं देखा ना, मेरे सामने आ तो जाए ठीक करके रख दूंगा। तो आकस्मिक ये कैसे हो गया? ये आकस्मिक नहीं होता है। ये आपने कभी तालाब को देखा हो, गंगा जी जहां बहती है, बहते बहते कुछ किनारे ऐसे हैं कि जहां पानी है वो स्टेग्नेट, वो बंद हो जाता है, वो छोर भी देखे हो तो वहां पर पानी के ऊपर में काई जम जाती है, वो एक लील के समान जम जाती है, वो गंध जम जाती है, पत्ते सब आकर के उसके ऊपर लग जाते हैं। कभी कभी तो तालाब पूरा काई से भर जाता है, वो लील से भर जाता है। अभी वो ऊपर है काई, ऊपर है पेड़ के पत्ते, नीचे पानी है कि नहीं है? बोलिए, ऊपर पानी दिखता नहीं है किंतु नीचे तो पानी है। ये पत्तों की काई की मोटाई क्या है? ऐसा है क्या? 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, उससे तो ज्यादा है नहीं है, किंतु उसके नीचे तो पानी है। ऊपर जो सतह दिखती है वो एक है, नीचे जो सतह दिखती है वो दूसरी है। अब नीचे जो सतह दिखती है वो बहती हुई भी हो सकती है और बिना बहती हुई भी हो सकती है। तो ऊपर से जो हम प्रेम बताते हैं, प्रेम करते हैं और गले मिलते हैं, गले में हाथ डाल करके बैठते हैं, रोज साथ में भोजन करते हैं, चाय चुई पी लेते हैं, किंतु भीतर भीतर में क्या होता है, वो जितना प्रेम ऊपर चलता है नीचे अंदर के अंदर आग भी इतनी चलती रहती है। कुछ लोग आकर के एकदम झुक करके प्रणाम करते हैं, मगर उन प्रणाम के पीछे खुन्नसता कितनी होती है, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि समाज में रहते हैं तो आपको प्रणाम करना जरूरी है। आई एम सिंपली हेल्पलेस, इसलिए कर लेता हूं, बाकी इंटरेस्ट मेरा हार्डली आई गॉट एनी इंटरेस्ट टू सी योर फेस। ये ऐसा भी होता है, तुम्हारी शकल मुझे पसंद नहीं है, किंतु जब समाज में रहता हूं तो मैं क्या करूं, आकर के प्रणाम करना पड़ता है, सब लोग मत्था टेकते तो हम भी टेक देते। तो ये वस्तु विषय मन इधर भी चलता है उधर भी चलता है, बाहर से दिखाता है करुणा, क्षमा, उदारता, प्रेम, सहानुभूति, और नीचे वो इतना छुरी रखता है, कब जाके मार देगा भरोसा नहीं है। तो ये बड़ा दुष्कर स्वभाव है मन का। जैसे हम कहते हैं ये पार्लियामेंट होती है ना, ऐसे मन की भी डेमोक्रेसी है, मन में भी पक्ष पलटू लोग भी होते हैं। किस समय वो किस दिशा में आपके विरुद्ध बोलेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है मन के मंदर में, क्योंकि उसमें भी बहुमत भी होता है अल्पमत भी होता है, और कौन सा सदस्य मन का विभाजन करके किसके पक्ष में जाकर के खींच लेगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए हम जो मन से निर्णय करते हैं वो मेजर माइंड होता है, माइंड का जो मुख्य भाग वो तो निर्णय होता है, किंतु अल्पमत प्रतीक्षा करता है, मौका आने दो तुमको गिरा के रख देंगे। यह भी मन की अवस्था होती है। जैसे कि बहुत सारे चिंतक हुए हैं, ऐसा एक किर्कगार्ड भी हुआ है, ये मन की गहराइयों के बारे में जो सोचने वाले हैं, रेमंड मूडी है इत्यादि, तो किर्कगार्ड भी एक ऐसे रहे। वो कहते हैं कि मन के साथ निरंतर डायलॉग होता रहता है, डायलॉग माने बात, अकेले लोग बैठे रहे तभी मन में बात तो करते रहते हैं। कुछ लोग हैं वो बैठ के ऊंचे से बोल देते हैं, वहां गई थी ना, फिर क्या हो गया था ना, तो वहां गई तो वो रोज आकर के आगे बैठ जाती है, माइक को पकड़ के बैठ जाती है, समझती क्या है वो अपने आप को। हाँ, वो मैं तो वहां कीर्तन में जाती हूं तो वही आके बैठ जाएंगे, सब दूसरे को चांस ही नहीं देंगे, वो अकेला बैठ के बोलते रहते हैं। कुछ संस्थाएं हैं जहां पर गुरुवार को शनिवार को रविवार को कीर्तन होता है तो लाइन से आगे लोग बैठते हैं, तो माइक इधर से इधर से इधर से इधर से चलता रहेगा, एक एक लोग कीर्तन करते रहेंगे, तो कुछ लोग हैं वो पक्का आकर के आगे बैठेंगे, उन्हीं का नंबर और किसी का नंबर नहीं आएगा। जिसका नंबर नहीं आता है वो बैठ के बैठे बोलते थे सब सब समय से उसी को नंबर क्यों होता रहता है। वो ऊंचे से बोलती है कभी कभी अकेली बैठ के ऊंचे से, अड़ोस पड़ोस सुन सकते, किससे बात करी, हाँ हाँ किसी से बात नहीं करे, कुछ बोल रही थी किसी से बात नहीं किया, उनको पता भी नहीं क्यों किसी से बात कर रही है, किसी ने आकर के पूछा तो पूछो, बड़ा मुश्किल काम है। ये जो हार्ट होता है हार्ट, उसको चेक करने के लिए होता है ECG इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राम, किंतु दिमाग को चेक करने के लिए भी कि EEG है। हमारा दिमाग तो बहुत खुरा पाती है मधु बाबू जी, हमने ये KEM हॉस्पिटल, बीच कैंडी वगैरह नहीं था, KEM हॉस्पिटल में हमने मान लीजिए कि 1965-66 में, मैंने कहा मैं चाहता हूं मेरा दिमाग को दिखाओ, कोई एक डॉक्टर थे प्रहलाद अंजारिया, तो उनके पास हम गए, वो बोले व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, नथिंग रॉन्ग, व्हाई वांट टू डू, अरे तो मुंडन तो करो, लगाओ इधर सब ट्यूब ट्यूब लगाओ, बैठेंगे एक घंटा देखो क्या होता है, देखना आपका मन कहां चलता है, स्थिर है कि इधर उधर भागता है, बड़ा मुश्किल है। तो मन के क्या कह रही है आपको किकगार, क्या कहते हैं, मन के साथ हमेशा वार्तालाप होता रहता है, मन अपने को ही दो हिस्सों में बांट देता है, एक बात सुनने वाला, बात बोलने वाला, तर्क करने वाला, तर्क नहीं करने वाला। जैसे कि वो चेस खेलने वाला होता है ना, चेस खेलने वाला होता है, वो मन ही मन में चाल चल लेता है कि इसके बाद में ये चलूंगा, ये चलने पर उसने ये चला तो ये चल दूंगा, उसने घोड़ा चला तो मैं हाथी चलूंगा, उसने सिपाही चलाया तो मैं राजा चला दूंगा, पहली 5 चाल में मात कर दिया तो दूसरे वाला जीत नहीं सकता है। आनंद को मिलो तो कभी पूछ लेना, वो आनंद कहता है यस स्वामी जी यू आर 100% करेक्ट। वो बोलते हैं कि पहले ही हमने प्लान करके उसको जानते ही उसकी बहुत खेल हमने देखी हुई है कि वो ऐसे ही चलेगा, वो उसको आगे चलने के लिए रुचि है ही नहीं है, किंतु मैं पहले से ही प्लान कर लेता हूं कि कौन सी वो घोड़ा चले, न सिपाही चले, न ऊंट चले, हाथी चले, राजा चले, न राजी रानी चले, न वजीर चले, मुझको कहां से मारना है प्लान कर लेता हूं। तो मन ही मन में युद्ध भी कर लेता है, मन ही मन में प्लान भी कर लेता है। हम सोचते कुछ है, हमारा मन दो हिस्सों में टूट जाता है, एक पक्ष में बोलता है दूसरा विपक्ष में बोलता है, समस्त विचार मन के भीतर ही भीतर, उनके परिणाम क्या होता है, व्हाट इज द रिजल्ट, कुछ नहीं है, रिजल्ट है फ्रस्ट्रेशन। हमने अपने आप में वास्तविक ऐसा होता नहीं है, मन को सोच लेता है, उपलब्धियां नहीं होती है, फिर वो फ्रस्ट्रेशन मन दुखी हो जाते हैं, हताश, अर्जुन जैसे बैठा है, नहीं लड़ूंगा, मेरे मुंह में झाग आ रहे हैं, मेरा हाथ है उसमें पसीना हो रहा है, गांडीव मेरे हाथ से गिर रहा है, मैं बैठ गया नहीं लड़ूंगा। कृष्ण ने कहा है कि एस्पिरिन खा लो, सिर दर्द होता है तो वो खाओ, कुछ भी हैव ए कप ऑफ टी, गरम चाय पियो, मूड में आ जाएगा, क्या करना है। तो हम चाहे कुछ भी भीतर देखने की कोशिश करें, भीतर का दर्शन अलग है, और हम कभी कभी भीतर होते हुए भी मौजूद नहीं रहते, चाहे कोई बाहर से एक बार देख ले, शर्त एक ही होगी, मन को छोड़ करके देखो, कोशिश करो कि बिना मन के देखो, बिना मन के करो, बिना मन के तो काम हो जाता है, बिना मन के किया हुआ काम कभी भी ठीक नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है ठीक। बिना मन के काम करते हैं तो पता नहीं होता है, यंत्रवत यंत्रवत यहां बैठ करके जो प्रातः काल में शांति पाठ करते हैं, आंख बंद करके शांति पाठ कर रहे हैं, तो रोज की आदत है, इसलिए एक के पीछे एक मंत्र अपने आप चले आते हैं, किंतु अगर आंख खुली ना रखो और बंद करो तो सहनाभव तो आ जाएगा, तो लगेगा हाँ सहनाभव तो आ गया, और बाकी 3 श्लोक कहां गए, अरे तुमने तो बोले थे भाई, यहां बैठे हुए हम शांति मंत्र पढ़ते हैं किंतु ओम जो 3 बार बोला था वो तो याद है, उसके बाद में जब सहनाभव तो आए तो अरे बीच में कहां गया, आप बोल रहे थे तो आप नहीं बोल रहे थे, वो शरीर बोल रहा था आदत की वजह से, मन तो नहीं था, मन कहां था, अल्लाह मालिक, मन कहां था कोई पता नहीं है, मन कुछ यही था कि थैला लेके आई हूं, आज मेहमान कुछ आने वाले हैं तो भरेला भिंडा नो शाक करवानो छे, तो ये भरेला भिंडा रहता है उसमें, थैला रहता है, फिर वो सब्जी वाली भी है जल्दी उठ के चली जाती है, बढ़िया बढ़िया चुन लिए जाएंगे, मैं क्या करूं, महाराज जी तो अच्छे हैं टाइम से चलते हैं। तो यहां रहते हुए मन है भिंडी बाजार में चक्कर लगाता है, बैठे रहें पूरा शरीर से, बोलिए शरीर यहां मन यहां, सत्संग मन शरीर यहां और शरीर यहां और मन कालबा देवी में, वो कुसंग है, वो आपका संग कुसंग को तय आपको करना है। तो कृष्ण क्या कहते हैं, ये क्षीण पुण्य क्यों होता है, पुण्य क्षीण होने की वजह क्या है, वो ऐसा पुण्य करे कि क्षीण ही ना हो, पुण्य से पुण्य मिलता चला जाए। तो ये क्या बोलते हैं, सेफ डिपॉजिट में फिक्स में रुपया रख दिया तो उसका सूद का सूद बढ़ता ही चला जाता है, तो फिर उसी को खर्चा करे, सूद को मूल जो उसको खर्चा ना करे। तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि चाहे कोई बाहर से देख ले, सब एक होगी मन को छोड़ करके देखे। संक्षिप्त में अगर इस वस्तु विषय को कहा जाए तो ये समस्त धर्म की यात्रा मन को खो जाने की यात्रा है, मन को खो जाने की, मन के रहते हुए बिना मन के रहे न मन। कल क्या कहा आपसे, नमन कहते हैं ना, मैं नमन करता हूं, नमन का मतलब ही है न मन। अमन क्या बोलते हैं, अमन कीर्ति यश देश के अमन को चाहते हैं, अमन माने उत्कर्ष है, अभ्युदय माने साथ है, ये उत्कर्ष है, अभ्युदय उत्थान है, तो वो तो हो सकता है नमन। ये क्या करना कि कभी हम सोच लें कि संसार का अर्थ क्या है, संसार का अर्थ यही है कि मन ही रह जाए, संसार का अर्थ, संसार का क्या है, मन ही रह जाए और आत्मा का, आत्मा को पता भी ना चले। अब मुझे ध्यान से बोलना, देखिए हम भूल जाएं कि हमने सत्संग में आए कर्ण भर के लिए, प्रेमपुरी जी के आश्रम में तीसरा माला में सभाखंड में बैठे हैं, रोज आ जाते हैं बोरीवली से कांदीवली से, कहां से आप लोग आते हैं। तो ये सोचना कि जब यहां आते हैं ट्रेन में, घर से निकले रेलवे स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन से ग्रैंड रोड तक, ग्रैंड रोड से यहां तक, तो कभी किसी ने अपने सोच लेना कि साचू को तमें यहां आखा आवता पूर्व में समाप्तिया सुधी में आत्मा नो विचार करो के ये घर से चले अब यहां बैठने तक वापस जाने तक आत्मा के बारे में कितने लोग सोचते हैं, यही नहीं सोचते मेरी 6:20 की ट्रेन ना छूट जाए ये सोचते हैं, मेरी जगह जो मैं रोज जहां बैठती हूं बैठता हूं वो मुझको मिलेगी कि नहीं, वो कदम है वो साहब हमेशा आते हैं वो बड़ा जिक्की जिद्दी आदमी, आई डोंट लाइक हिम, वो मेरे सामने बैठ के बड़बड़ बड़बड़ बहुत करता है, मैं माला लेके आती हूं वो तो बोलता रहता है, कदम मेरे को पसंद नहीं है। तो रास्ते में आते आते मेरी जगह, मेरी फास्ट, मेरी सुपर फास्ट हो, कोई कौन मेरी जगह में बैठ जाएगा, सत्संग करता हूं कि नहीं, और मेरे को फला फला सीट मिल गई तो वहां लोग अच्छे मेरे को लंबी पांव करने देते आगे वाली सीट में, लंबी पांव, तो इन्हीं विचार में रहते हो, इन्हीं विचार में आते हो जाते हो, घर जाकर के क्या होगा, कोई आने वाला जाने वाला, इनकी पूरी पिस्ट पेशेंट दिन भर करते रहते हो, बीच में आत्मा के बारे में कहां सोचा, पूछो अपने, आत्मा का विचार भी नहीं है, आत्मा के बारे में जागृति भी नहीं है, एक बार भी नहीं है, सत्संग है, स्वामी जी है, प्रसाद है, शाम को क्या होगा, ये वह बात है, आत्मा के बारे में कहीं, तो संसार यही है, संसार क्या है, मन ही रह जाए इधर की उधर की बातों में और आत्मा का पता भी ना चले। पूछो अपने आप को, क्या मुझको अपनी आत्मा का भरोसा, आत्मा के बारे में दिन भर में एक क्षण, 24 घंटे में एक घंटे में 60 मिनट होती है, 60 मिनट में फिर एक मिनट में 60 सेकंड, इतने में कितनी सेकंड तक मैं आत्मा के साथ में रहा न रही, पूछ, बड़ा मुश्किल प्रश्न है, टटोलना अपने आप को। आत्मा का पता चलना आसान नहीं है नारायण, सारी चेष्टा तो मन को मजबूत करने की है, जैसे आपसे कहा कि हवन में घी डालते रहो तो वो हवन है उसकी अग्नि जलती रहती है, मन को विचार करने को छोड़ दो, कहां से क्या क्या विचार करता है, वो विरार से लेकर के चर्च गेट तक हर स्टेशन में उतर जाता है, हर स्टेशन में चढ़ जाता है, फिर वीटीवी जाकर के आता है, उधर थाना जाकर के आता है, कल्याण जाकर के आता है। बच गए अगर इतने ही दोनों लाइन में चलते हो, कलकत्ता जमशेदपुर नहीं गए तो पता नहीं कहां का मन रहता है। पूछो अपने आप को, और जो मन को एक लंबी ढीली रस्सी दे दोगे वो इधर उधर एक करता रहेगा। एक बंदर को कूदने की आदत होती है, उस बंदर को रस्सी में बांधो और बांध करके खूंटे में गाड़ दो तो कहां तक जाएगा? रस्सी जितनी लंबी है उतने में ही कूदेगा, पर धीरे धीरे रस्सी को कम करते चले जा। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम कहा है। स्वाध्याय और प्रवचन है, उसमें प्रमाद नहीं करना, यहां क्या सुना है उसका चिंतन करते करते जाओ। कल आओगे तो कल क्या सुना था उसको सोचते सोचते आओ, तो ये रहेगा तो मन स्वाध्याय में रहेगा। सवेरे सवेरे उठ करके अगर कोई एक अखबार को पढ़ लिया है ना, कोई सिनेमा का गाना सुन लिया है, दिन भर फिर वही रहता है, दिन भर वही रहता है। मैं भी नौकरी करता था, हमारे जो बॉस थे वो, उनको अभ्यास है कि कैफे में जाकर के एक कॉफी पी लेना। उन दिनों में वो कैफे हाउस में जूहू बॉक्स हुआ करते थे, चार आने का सिक्का डालो और एक गाने पर नंबर दबाओ, वो ऐसे करके एक रिकॉर्ड उठाएगा, उठा करके बजा देगा। वो जो रिकॉर्ड सुन के आएंगे जैसे ए नीम कर अभी तो चले गए ऊपर, तो दिन भर वो ही गाते रहेंगे। मीटिंग हो रही है डीजी के साथ में, एमडी के साथ में, ग्राहकों के साथ में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, उसके बीच में बैठ के छेड़ सखी सरगम, हाँ तू सुखे तो पटेल बोल जुए, छेड़ सखी सरगम, ये क्या है? वो चाय के हाउस में छेड़ सखी सरगम बोला था, वो ही उनके आस उसमें घुटके आता रहेगा। सवेरे सवेरे व्हेन यू स्टार्ट योर डे, जब दिन को प्रारंभ करते हो, बैठो अपने स्थान पर, उठ के मत भागो, कहां कहां अपने यात्रा किए उनकी यात्रा करो, बिस्तर से मत भागो, बैठो महाराज जी, बिस्तर से उठ के भागना नहीं है, सीधा बैठो, शांत बैठो, जाओ सीधा सलासर, जाओ सलासर जी का दर्शन करो, सलासर जी को ढोक दे दो, चूरमा चढ़ाओ, वहां के प्रसाद भी पाओ, प्रदक्षिणा करो, दान दक्षिणा करो, वहां से झुंझुनू जाओ, रानी सती जी को जाओ, वहां दर्शन करो, दंडवत करो, वहां से कहां जाना है, वहां से कोई और देवता है तो वहां पर जाओ, बालाजी को जाओ, अपने अपने को देखो, सवेरे उठ करके क्या करो, पहले उठ करके गंगा जी में स्नान करो, यमुना जी में स्नान करो, गोदावरी में स्नान करो, गोमती में स्नान करो, नासिक में स्नान करो, पंचवटी में स्नान करो, ऋषिकेश में स्नान करो, बनारस में स्नान करो, अयोध्या जी के सरयू जी में स्नान करो, नदियों में स्नान करके गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनारायण केदारनाथ का दर्शन करो, द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करो, जगन्नाथ जी महाराज का दर्शन करो, द्वारका जी का दर्शन करो, रामेश्वरम का दर्शन करो, ये तमाम दर्शन करके भी तमाम संतों के चरणों में प्रणाम करो। अपने गुरु महाराज हैं प्रेमपुरी जी महाराज का दर्शन किए तो उनको श्री 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 स्वामी अखंडानंद जी के चरणों में प्रणाम करो, विशुद्धानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करो, स्वामी सत्यानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करो, मां पूर्ण प्रज्ञा जी के चरणों में प्रणाम करो, सबको प्रणाम करके फिर उनका चरणों में आशीर्वाद लेकर के थोड़ा महाराज जी सत्संग सुना, ये सत्संग सुनो तब उतरो। रोज सवेरे अपने दिन का प्रारंभ करते हो, तमाम नदियों में स्नान कर लो, तमाम तीर्थों का दर्शन कर लो, तमाम संतों के, यू स्टार्ट योर डे। रात में सोने के पहले फिर बैठो, फिर जाकर के फिर तमाम नदियों में आचमन लेकर के तमाम का दर्शन करके फिर सो। 5 मिनट प्रातः दिन भर आप उनके साथ में रहेंगे, संतों के साथ में रहेंगे। सवेरे सवेरे मन को ये डोज दे दो, उठने के साथ में कोई लोग ये ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, कोई हार्ट की दवाई खाते हैं, तो एक 1 TDS होती है, एक गोली दिन में 3 बार होती है, तो ये आप भी सवेरे एक गोली खा लो, तीर्थों में स्नान की, संतों में दर्शन की, चरणामृत लेने की, थोड़ा सेवा करना है तो मैंने गुलाब के फूल की थोड़ी सेवा पूजा की माला वगैरह बना दी, माला जी चंदन जी बना दिया, भोग बना दिया, तो ये ठाकुर जी के साथ में स्टार्ट योर डे विद गॉड, एंड योर डे विद गॉड, फिल योर डे विद गॉड, यू लिव विद गॉड, प्रतिपल आपके दिमाग में कुछ वो ही रहेंगे, फिर छाए रहेंगे, तो उसकी चाबी कहीं बाहर नहीं है, चाहे तो भीतर ही आपके प्रयत्न है, किंतु अगर रात में सोने के पहले कोई हॉरर सिनेमा देख करके सो गया तो फिर वो हॉरर ही आएगा, ऐसे देखेगा रात में फिर वो, हाँ काला कोट और काला पैंट और झुकी हुई टोपी और फिर हाथ में खंजर लेके चल रहा है, रात में 2 बजे हैं, ठाप 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 ठाप, पीछे देखा दो बिजली आ रही, बस कल आएगा बाकी, चलो तो इतना ये देख करके सो गया तो हमारे पांव का नाखून टूटा है उसमें अगर चादर फंस गई तो वो रात में जो हॉरर देखा था वही आएगा कि मेरा भूत ने पांव पकड़ा है, भूत ने नहीं पकड़ा है तुम्हारे नाखून ने पकड़ा है। तो जैसे विचारों को लेकर के, मान लीजिए कि शुक्रवार है, शनिचर को इतवार को आपकी बैंक बंद रहती है, शुक्रवार को आपने 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया बैंक में रख दिया तो सोमवार को गए तो वो आपको वैसे ही मिलेंगे। रात में सोने के पहले हरिनाम को लेकर के सोए तो, सवेरे उठते फिर हरिनाम लेकर के उठे तो आपके सुसुप्त अवस्था में मन वही हरिनाम ही लेता रहेगा। रात में झगड़ा करके दुख होकर के क्लांत करके सोएंगे तो रात में अवचेत मन में भी वो ही करता रहेगा। मन आपका दोस्त हो सकता है, मन आपका दुश्मन भी हो सकता है। अभी आपको सोचना है क्या करना है। लोग तो ऐसे, मैंने क्या कहा कल, हम बीच कैंडी में एक कैंसर के पेशेंट को देखने के लिए गए, अहमदाबाद से आए हमारे पहचान वाले हैं, तो इतना चेहरा दुखी है, जब हमने दरवाजा खोला धीरे से तो वो सिनेमा देख रहे, वो टीवी है ना, टीवी देख रहे, क्योंकि वो उनके साथ में कोई भतीजा भी था तो टीवी देख रहे, अच्छी बात है क्या, खुरी बात है, हमको देखने से ऐसा रोने का चेहरा बना, ये नाटक करने की क्या जरूरत है, ये नाटक करने का, देखो भाई क्या खुश रहो, खुशी बांटो, दुखी होना नहीं, ये दुख देना नहीं, भगवान को भूलना नहीं, इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है आपके लिए, नाटक करने की क्या जरूरत है। किंतु कुछ लोग हैं उनको बीमारी आ जाने से बस वो नाटक तो नहीं कर सकते, अब मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मर रहा हूं, क्या बोलते हैं, मेरे को भगवान में कोई भरोसा नहीं, महाराज जी माफ करना, ये भगवान सब ढोंगे ततेंगे, मैं इतने साल आपके आश्रम में आता रहा, इतना सत्संग करता रहा, इतने संतों की सेवा, मुझको कैंसर हो गया, अरे तो दिल से तो आश्रम में आता था क्या, पूछ, मैं देश विदेश में जाता हूं तो पुजारियों को बराबर कहता रहता हूं, मेरे प्यारों, ये हमारे यूके है, लंदन में, वहां क्या करते हैं लोग, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है तो 50 पाउंड मांगते हैं, कार को भेजना, कार वापस जाएगी, और हमको भोजन देना, 3 घंटा पूजा पाठ का लगेगा, 50 पाउंड देना पड़ेगा। मैंने कहा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने को 3 घंटे की पूजा क्या होती है, पाठ करना है तो पाठ कर लो, किंतु वो पैसा तो ले लेते हैं। मैं बोले कि नहीं महाराज जी, आप ऐसा करो ना, हम दक्षिणा दे देंगे, हमको फुर्सत नहीं है, 3 घंटा बैठने की बड़ा मुश्किल होता है, तो ठीक है सामग्री का पैसा अलग दे दो, 15 पाउंड 50 पाउंड 65 पाउंड दे दो, वो ना सामग्री लाएगा न तो पाठ करेगा, 65 पाउंड ले लेगा, 1 पाउंड का 80 रुपया बनता है। अब तो क्या होगा, ऐसे पैसा जब बटोरता रहेगा, सामने पाठ नहीं करेगा तो देखिए कर्म छोड़ता नहीं है, फिर उसके यहां बच्चा पैदा होता है, ऐसे करके हाथ, ऐसे करके पांव, ऐसे करके मुंह, कर्मणा गहना गति ही कवयोपि तत्र मोहिता, संतो कर्मन की गति न्यारी, मूर्ख को तुम राज दियत हो, पंडित फिरे भिखारी। हम संतों के लिए एक नियम बना हुआ है कि भोजन के पहले 15वें अध्याय का पाठ करो, क्यों, वो भोजन जो है वो किस गति से, किस मति से, किस इच्छा से कोई दे रहा है, जो आपको घर में बुला करके भोजन देता है तो वो भोजन देने वाले की उसमें वासना होती है, कुछ भी वासना हो, मेरा कल्याण हो, मेरा शुभ हो, तो कोई आपको कुछ देता है उसको भोग लगाने के पहले भगवान का नाम लेके उसको शुद्ध करो, ताकि अधिकार पूर्वक वो भोजन लेने के लिए आप अधिकार बने, तो होता नहीं है, पैसा तो ले लेते हैं, फिर बच्चे लूले लंगड़े हो जाते हैं, अच्छा बच्चा है रात में कहीं से गिर गया, फिर क्या होता है, आधी रात में पत्नी को कोई तकलीफ हो गया, डॉक्टर के पास लेके जाओ, और वो डॉक्टर लोग भी ऐसे है, हाँ ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो क्या जानेगा पुजारी, हाँ स्वस्ति दा इंद्रो बोलने वाला कि पेट में कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं है, रात में कुछ उल्टा सीधा खाया थोड़ी गैस ज्यादा बन गई तो दिल में थोड़ा तकलीफ हो जाती है, हाँ वो इनो फ्रूट शूट पी ले तो ठीक हो जाएंगे, मगर होता नहीं है, कोई बताने वाला नहीं उनको, वो तो मंत्र बोलना ही जानता है। तो इस डॉक्टर के पास लेके जाएगा, वो दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाएगा, रात में उनको 12,000 रुपया खर्च करवा देंगे, सवेरे घर भेज देंगे, क्या करेंगे वो 3 घंटा उसको सलाइन लगा देंगे, वो पंडित जी समझेंगे वो सलाइन लगा देना, आ हा हा कितनी बड़ी बात है, आईसीयू में डाल दिया, तुम्हारा नमक कम हो गया है, तुम्हारा चीर क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं पैसा तो ले लेते हैं, उसके सामने जप नहीं करते, ध्यान नहीं करते। महात्माओं को भी यही है, महात्माओं की भी मुक्ति नहीं है, हर घर में जाकर के भोजन करने वाले महात्मा उपाय नहीं है उनको, रोज रोज बैठ के जहां बैठो भगवान का नाम करो, और ये क्या करना, जिसके भोजन हम कर रहे हैं उसका मंगल हो, उसका कल्याण हो, उसका शुभ हो, ऐसी भावना रखो, फिर आपका कोई आपत्ति नहीं है, किंतु स्वार्थ ही बना रहेगा, दक्षिणा लोग देते रहे और हम दक्षिणा लेते रहे, फिर वो दक्षिणा हमको निकलेगी यहां से दाएं से बाएं से। क्यों होता है लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, क्यों होता है लोगों को लंबोसकल पेन, घुटनों में क्यों दर्द होता है, शुगर क्यों बढ़ती है, हार्ट अटैक क्यों होता है, हमारे कर्मों का फल ही मुझको, मेरा कर्म का फल मुझे भोगना पड़ेगा, आपके कर्मों को आपको भोगना पड़ेगा, इसमें कोई कोई सहाय नहीं करेगा। चेले के दुख को गुरु नहीं ले सकते, गुरु के दुख को चेला नहीं ले सकता है, पति के पाप को पत्नी नहीं ग्रहण करेगी, पत्नी के पाप को पति नहीं ग्रहण करेगा, उसके लिए आपको क्या कहा है, पत्र लोग लिखते हैं मुझको कोई भगवान में भरोसा नहीं है, मन भय के कारण मान लेता है। कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, सकाम सघन साधना लोग करते, क्या कहा है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, तुम्हारा जो पुण्य पूरा हो जाएगा तो तुमको दुख भोगना पड़ेगा, एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वेदों ने जो कहा, वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम तेने सस्य विधीयताम अपचिति काम्ये मति सज्जताम। भगवान भाष्यकार ने अपने साधन पंचकम में कहा कि ग्रंथों को पढ़ो, किंतु पढ़ने के बाद में उसमें जो आदेश है ऐसे अपने हर कार्य को अच्छी तरह करो, स्व अनुष्ठीयताम सुअनुष्ठीयताम, अनुष्ठान नहीं सु अच्छी तरह से करो, इधर से उधर से छोड़ने की वृत्ति नहीं करो। आज का दिन समझ लो कि मेरे जीवन का अंतिम दिन है, मैं आज के जीवन में कितने लोगों को खुशी दे सकता हूं, खुशी देने के लिए कोशिश करना चाहिए। आज के दिन में मैं कितना भगवत भजन कर सकता हूं करने के लिए कोशिश करना चाहिए। आज के दिन में मैं कभी कितनी सेवा परोपकार कर सकता हूं, कल का मुझे भरोसा नहीं। तो इसी हर क्षण ऐसे ही करते चले जाओ, हर क्षण सोचो कि एक सांस जो आई है वो वापस भीतर आएगी कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। हर सांस में परमात्मा को जोड़ो, कृष्ण को भीतर लेके जाओ, कृष्ण को भीतर से बाहर लाओ, कृष्ण के साथ में रहो। आपके कौन इष्ट है, आपके कौन गुरु है, बीवी थी मन के साथ नहीं, मन की मर्कटता के साथ में नहीं, अपने इष्ट के साथ में रहो, अपने गुरु के साथ में, हर सांस में उसके साथ में, हर क्षण वृंदावन में रहो, हर क्षण काशी में रहो, हर क्षण गुरु के चरण में रहो। बड़ी सुंदर बात है। कल महाराज जी क्या कह रहे थे, कल महाराज जी कह रहे थे देखिए हमने जाल फेंकते हैं, जाल तो फेंकते हैं तो मछलियां जाल में आ जाती हैं, किंतु कौन सी मछली नहीं आती है, जो मछुआरे के पांव के पास रहती है वहीं चक्कर लगाती है, वो नहीं आती है श्री हरि के चरण को। हाँ तन क्या कहा है, गुरु चरण न पद तन मन वारो एक भाव धरी मंगल पाओ। गुरु के स्मरण मात्र से रोमांच हो, गुरु के स्मरण मात्र से आनंद भर जाए, गुरु की उपस्थिति की हम अनुभूति करें। ये कैसे हो सकता है, एक छोटी सी कथा के साथ में आज के वाणी को विचार को यही विराम देंगे, फिर कल आगे बढ़ाएंगे इस बात को। दिल्ली के निकट, दिल्ली के बीच में अब एक छोटा सा गांव है जिसको हम कहते हैं निजामुद्दीन। निजामुद्दीन जहां पर है वहां बाबा निजामुद्दीन ओलिया रहते थे, दिल्ली इतनी बड़ी थी ही नहीं। वहां उस जंगल में बाबा निजामुद्दीन ओलिया रहते थे, एक मोमिन आता था रोज आकर बोलता था मुला अस्सलाम वालेकुम, मुला मेरी बेटी का निकाह करना है, मुझे थोड़ी खैरात दे दो, मुझे सहाय कर दो। रोज आएगा बाबा, ऐसे बैठे रहेंगे, बाबा बैठे ही रहेंगे, वही रोज आता रहा, 6 महीने तक आता रहा, कितनी दूर से आता था थक करके। उसको बड़ा भरोसा था कि मौला निजामुद्दीन है, वो खाजा मुझको एक आशीष कर दे, एक दुआ कर दे। एक दिन झल्ला गया, मौला के पांव पकड़कर हिला दिए, सुनते नहीं हो, बहरे हो क्या? आपकी चौखट पर छोड़कर हम और कहां जाएंगे? बेटी का निगाह करना है, बेटी बड़ी हुई जा रही है, 6 महीने हो गए, कुछ देते ही नहीं, बोलते तक नहीं। ओ मौला ने देखा चारों, छोटी सी तो झोंपड़ी थी, हिलाओ तो गिर जाएगी, घास ही घास था। ख्वाजा मौला निजामुद्दीन साहब ने जो चोला पहना था वो भी 20 जगह फटा होगा। देने के लिए कुछ नहीं, ना हुक्का नहीं है वहां पर, दंड नहीं है, कमंडल नहीं है, राख नहीं है। वो निजामुद्दीन साहब के बहुत फटी हुई जूतियां पड़ी थी, वो जूतियों का आकार ही है, नहीं तो 100 जगह में फटी है। तो उनका ये लेके आ, वो लेकर के निजामुद्दीन साहब ने अपने हाथ लेके जा, कुछ चाहिए ले जा। बड़ा मुश्किल काम हो गया ये फटी जूतियों को, बेटी का निकाह करना है, इसको करूंगा क्या मैं? वो बोला नहीं, मगर मौला ने जो दी है तो उसने सिर में लगाई, दिल में लगाई, किंतु मन में बहुत दुखी हो गया। 6 महीने के बाद में मौला ने दिया तो भी अपनी फटी जूतियां दी, जिसका कोई उपाय नहीं, फेंक भी नहीं सकता है मौला की जूती को, करेंगे क्या? तो सिर में जो बांधने का एक छोटा सा गमछा था उसमें उसने जूतियों को बांधा, चला। रास्ते में थक गया, शरीर से तो थका, मन से भी थक गया था। 6 महीने के बाद में किसी पेड़ के नीचे सो गया, पेड़ के नीचे सो गया। वहां से जंगल से कोई सौदागर जा रहा था, 40 ऊंट लेकर के, ऊंटों के ऊपर में हीरे थे, पन्ने थे, जवाहरात था, मोती थे, माणिक थे, नीलम थे, पोखराज थे, यही सब था। सौदागर जब वहां से निकला, ये यहां पर ये मौलान सो रहा है मोमीन, तो सौदागर ने कहा रुको, मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे मौला यहां पर है। लोग गए चारों ओर, बोले मौला तो नहीं है, एक मोमीन सो रहा है, खुदा नहीं, खुदा का बंदा है, जगाना नहीं, रुको जगने तक। वो जो भाईजान नींद से उठे, सौदागर ने कहा अस्सलाम वालेकुम जनाब, वो खिन्नाया हुआ था, सलाम वालेकुम ऐसे जवाब दिया। कोई दुखी देखते हो? दुखी? 6 महीने तक ख्वाजा निजामुद्दीन साहब के पास में जाता रहा, मेरी बेटी का निकाह करना, वो आग लगी थी ना, भड़ंस निकालनी, कहीं तो निकालेगा। 6 महीने के बाद में दी क्या, देख क्या दिया, वो पोटली छोड़ करके जूती उसके ऊपर फेंक दी, उसने पकड़ ली। अरे ये तो मेरे मौला की है, तुझको चाहिए तो ले फूट, मेरे को शांति से रहने दे। नहीं 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 नहीं, बोला ने खुद अपने हाथ से दी क्या? अरे तो क्या पांव से देगा क्या, पहने लायक है क्या? ले जा तू, ले जा। मौला ने क्यों दी? अरे 6 महीने से मैं सिर फोड़ रहा था इसलिए दी, तेरी बेटी के निकाह के लिए। आ जा। वो बड़े प्यार से उन जूतियों को अपने मस्तक पर धारण करके, दिल से लगा करके चूमता हुआ सौदागर इसका हाथ पकड़ के आया। वो जो 40 ऊंट जो थे, आगे वाले ऊंट की रस्सी उसके हाथ में दे दी, साथ में जो गुलाम थे कहा इसके पीछे पीछे इसके घर चले जाओ, ये क्या है, तेरी बेटी का निकाह हो जाएगा और 7 पुश्त तक तेरे घर में किसी बेटी के लिए तुम्हें कहीं हाथ नहीं फेराना पड़ेगा, जा जा। वो कुछ समझे नहीं क्या हुआ, वो तो चला गया उन जूतियों को लेकर के। बड़े प्रेम से सौदागर है निजामुद्दीन साहब के पास में आए, उनके सामने जूतियों को रखा है, आदाब किया है, सलाम अलैकुम। बड़े प्रेम से करुणा के मौला ने भी कहा वालेकुम सलाम। जूतियों को देख करके धीरे से मौला बोले हैं सौदा कितने में किया? आंख में आंसू भर के बोला मौला बहुत कुछ नहीं था, कुछ पत्थरों के टुकड़े ही थे, 40 ऊंट थे, बस इतना ही दे पाया। मौला फिर बोले हैं तब भी सौदा सस्ते में पड़ा है। ध्यान दें, हमारी तमाम चेतना को जब हम परमात्मा में लगा देते हैं,
गतागतम काम कामालबंदे, तब हमारी कामनाएं तमाम शेष हो जाती हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट कितनी ही लेते रहो आप, किंतु कोई एक भी सेल कहीं भी पूरे शरीर में रह गया तो दिखेगा नहीं, आकस्मिक हटा पता चल जाएगा कि पूरे शरीर में कैंसर फैल गया है। कोई एक वासना दिमाग के किसी भी कोने में रहे, वो वासना कभी भी पूतना बन करके आ सकती है। बालान भक्षयति इति, पूतान नयति इति, विध्वंस कर करके रख देगी। जागृति चाहिए, मन के किसी भी कोने में कोई कामना ना रखे। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा अगर हो तो ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। 21वें श्लोक में ही वाणी को विराम करते हैं, आगे चिंतन कल करेंगे। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समय दान के लिए धन्यवाद, आपके सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।